नमस्कार। सीएफटीआरआई की अपने इस पाक्षिक ऑडियो डाइजेस्ट थाली टेल्स में आपका स्वागत है। थाली टेल्स आपको पोषण, खाद्य अनुसंधान, स्वच्छता और सुरक्षा संबंधी उपयोगी जानकारी प्रदान करेगा। प्रस्तुत है भाग दो, द्वितीय अंक, 22 मार्च 2019। इस सप्ताह हम मिलेट्स, मिठास क्या है, फॉक्सटेल मिलेट्स और शिशु के लिए ऊपरी आहार का महत्व, इन विषयों पर बात करेंगे।
सबसे पहले मिलेट्स की बात करते हैं। हम लगभग रेगिस्तान जैसी बंजर और अनुपजाऊ जमीन पर कैसी फसल उगा सकते हैं? आप कहेंगे कुछ भी नहीं, सिवाय कैक्टस के। हो सकता है कि आप गलत हैं, क्योंकि ऐसी भी फसलें हैं जो कि कम उपजाऊ एवं शुष्क परिस्थिति में भी उगती हैं और हमें अच्छा आहार उपलब्ध कराती हैं, और उनको हम मिलेट कहते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, मिलेट्स। इनके उत्पादन और खपत में अचानक वृद्धि पाई गई है, और यही नहीं, सुपरमार्केट में इनको अब अलग से स्थान भी मिल गया है। सूखे की फसल से एक महत्वपूर्ण अनाज के रूप में पहचाने जाने वाले बाजरे के बारे में आगे जानते हैं। मिलेट छोटे दाने वाले अनाज की फसलों का एक समूह है। यह दुनिया में लगभग हर जगह उगाया जाता है और इनकी सूची काफी लंबी है। उदाहरण के लिए कुछ लोकप्रिय मिलेट्स ज्वार, बाजरा, रागी, फॉक्सटेल और दूसरी ओर है कोदू, छोटे मिलेट, प्रोसो मिलेट और बानियार्ड मिलेट, जिनकी जानकारी बहुत कम लोगों को है, और साथ ही आयातित विदेशी प्रजातियां भी होती हैं, जैसे टेफ। मिलेट्स चावल और गेहूं की तरह एक प्रकार की घास होती है, जो कि पोसेई या ग्रामीणी परिवार से संबंध रखती है। अन्य घास की तरह यह भी एकल दाना या कर्नल बनती है, और हर एक कर्नल की तीन महत्वपूर्ण परतें होती है। पहली परत पेरिकार्प या फली, जो कि सख्त एवं रक्षणात्मक बाहरी आवरण होता है। दूसरी परत एम्ब्रियो या भ्रूण, जो कि बीज के बोए जाने पर नए पौधे के रूप में उगता है। और अंत में सबसे आंतरिक परत, जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं, जो कि बीज के बोए जाने के बाद नए पौधे के रूप में उगता है। और अंत में सबसे आंतरिक परत जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं, जो कि प्रोटीन, स्टार्च, मिनरल्स, एंजाइम्स और आवश्यक अमीनो एसिड आदि पदार्थों का भंडार है। मिलेट्स की खेती की परिसीमा एवं उनके आकार के अनुसार इनको मेजर या माइनर में वर्गीकृत किया गया है। ज्वार एवं बाजरा आमतौर पर मेजर मिलेट्स जाने जाते हैं, और रागी, कंगनी, कोदी, प्रोसो और बानियार्ड मिलेट आदि माइनर मिलेट्स की श्रेणी में आते हैं। पौष्टिकता की दृष्टि से क्या वे चावल और गेहूं से बेहतर हैं? तो जवाब है हाँ। मिलेट्स में जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिसमें फाइबर की प्रचुरता होती है, और साथ ही इनमें फिनोलिक कंपाउंड होते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। मिलेट्स आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, नियासिन, B6 और फोलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत होता है। जैसे फिंगर मिलेट या रागी को ही ले लीजिए, इसमें कैल्शियम और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही यह अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन, सिस्टीन और मेथियोनीन से भी भरपूर होता है, जबकि पर्ल मिलेट भरपूर ऊर्जा देने के अतिरिक्त आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, प्रोटीन एवं फाइबर की भी आपूर्ति करता है। इसमें मौजूद ट्रिप्टोफैन का उच्च स्तर हमारे शरीर फील गुड यानी सेरोटोनिन का उत्पादन करने में मदद करता है, जिससे हमें अच्छा महसूस होता है। इसके अतिरिक्त इनमें मौजूद फाइटोस्टेरॉल्स, एंथोसाइनिन्स बढ़ती हुई उम्र के प्रभाव को कम करते हैं, और यह कब्ज की समस्या से बचाता है। यह मधुमेह के रोगियों के लिए हितकर है। मिलेट्स पचाने में आसान होते हैं, और इसमें अधिक मात्रा में लेसिथिन होता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखता है। यह हमारे भोजन के अतिरिक्त मुर्गियों के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल भी किया जाता है। फसल कटने के बाद बची हुई भूसर पशुओं के चारे की तरह इस्तेमाल होती है। साथ ही इनके कई औद्योगिक अनुप्रयोग भी हैं, जैसे कि ज्वार की पुआल का प्रयोग शराब बनाने के लिए होता है। अगर यह अनाज इतने लाभकारी है तो यह चावल और गेहूं की तरह लोकप्रिय क्यों नहीं है? क्या यह हाल ही में खोजे गए हैं या इन फसलों को भुला दिया गया है? यदि हम मिलेट्स के इतिहास पर नजर डालें तो यह प्रतीत होता है कि यह इंसान द्वारा प्रयोग में लाए गए सबसे पुराने खाद्य पदार्थों में से एक है। साक्ष्य दिखाते हैं कि मिलेट्स की खेती 3500 से 2000 ईसा पूर्व के लगभग कोरियाई प्रायद्वीप में होती थी। भारत में इसका वर्णन कुछ प्राचीन पांडुलिपियों में भी मिलता है। कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम में महर्षि कणव द्वारा राजा दुष्यंत के दरबार में शकुंतला की विदाई कर देते हुए कंगनी के प्रयोग का वर्णन मिलता है। कनकदास द्वारा रचित रामधान्य चरित्र में रागी और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कंगनी और कोदो मिलेट्स को पकाने की कला का वर्णन भी मिलता है। लेकिन तब भी यह क्यों और कैसे हमारे अनाज के भंडार से गायब हो गई? ऐसा प्रतीत होता है कि इसका प्रमुख कारण चावल और गेहूं की खेती में हुई अत्यधिक बढ़त है। दूसरा कारण है कि चावल और गेहूं आसानी से पक जाते हैं। गेहूं की रोटी बेलना आसान होता है, जबकि बाजरे को पकाने के लिए खास हुनर की आवश्यकता होती है। हमारी बदली जीवन शैली ने जहां एक और कई रोगों को जन्म दिया है, वहीं उपचार हेतु बाजरे ने फिर हमारी थाली में अपनी जगह बना ली है। निश्चित तौर पर हमें इन अनाजों के प्रसंस्करण के लिए मशीनों के साथ साथ इनको पकाने के लिए आसान तरीकों की आवश्यकता होगी, जिसमें कि मिलेट्स हमारी पहली पसंदीदा फसल बनने के साथ साथ भविष्य की फसल भी बन जाएगी। पानी की कमी एवं वैश्विक जलवायु परिवर्तन ने हमें मिलेट्स पर निर्भर होने पर मजबूर कर दिया है। यही अच्छा है कि हम अभी से इसके अभ्यस्त हो जाएं।
सवियु सक्करेयोळगो, सक्करेयु सवियोळगो, सवियु सक्करे एरडु जीवेयोळगो। सोलहवीं शताब्दी के आधुनिक कर्नाटक कवि, दर्शन शास्त्री, संगीतज्ञ एवं संगीतकार श्री कनकदास ने कहा था, क्या चीनी में मिठास है या मिठास में चीनी है, या फिर चीनी और मिठास दोनों ही हमारी जीवा पर होती है। दार्शनिक एवं वैज्ञानिक रूप से यह व्यावहारिक प्रश्न है, हमें मीठे का एहसास क्यों होता है? निश्चित रूप से मिठास एक स्वाद संबंधी एहसास है, जो पशुओं को खाने पीने में सही गलत को पहचानने की योग्यता देता है। इस प्रकार मूल्यांकन इन्हें पौष्टिक पदार्थों को खाने और विष एवं विषाक्त पदार्थों से दूर रहने में मदद करता है। इसमें कोई शक नहीं कि पशुओं एवं मनुष्यों की स्वाद संबंधी अपनी अपनी पसंद होती है, इसलिए वे निश्चित प्रकार के भोज्य पदार्थों को दूसरों के मुकाबले ज्यादा पसंद करते हैं। स्वाद का अनुभव न केवल आनंद देता है, बल्कि विषाक्त पदार्थों के सेवन से भी बचाता है। कन्नड़ भाषा की कुछ बोलियों में कड़वेपन को विष का पर्याय माना जाता है। चीनी एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि मीठी होती है, लेकिन सभी मीठे पदार्थ कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। सिर्फ वे ही कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन विशिष्ट रूप से जुड़ते हैं। मिठास न तो कार्बन, न ही ऑक्सीजन और न ही हाइड्रोजन में होती है, यह तो इनकी पारस्परिक क्रिया का बाई प्रोडक्ट यानी उपोत्पाद है। सीधे तौर पर कहा जाए तो मिठास रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्ड में भी नहीं होती, यह एक ज्ञानेन्द्रिय अनुभव है। चीनी के अणु हमारे टेस्ट बड्स यानी स्वाद कलिकाओं पर परस्पर प्रभाव डालते हैं, जो नर्वस सेल्स को एक निश्चित प्रकार के संकेत उत्पन्न करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मिठास की अनुभूति नर्व एक्टिविटी द्वारा उत्पन्न होती है। सामान्यतः स्वाद कलिकाओं की गतिविधियां मिठास एवं अन्य स्वाद के अनुभव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। यदि टेस्ट बड्स किसी कारणवश शर्करा के संपर्क में नहीं आ पा रही हैं, या इन पर पहले से किसी तेज स्वाद का प्रभाव है जो कि शर्करा को उनके संपर्क में नहीं आने दे रहा है, तो हमें मिठास की अनुभूति नहीं हो पाती है। जैसे मिठाई खाने के बाद चाय फीकी लगती है। इतना ही नहीं, यदि टेस्ट बड्स निष्क्रिय हो जाते हैं तब भी आपको मीठे का एहसास नहीं हो पाएगा। उदाहरण के लिए मधुविनाशिनी के पत्तों को चबाने के बाद चीनी खाने पर वह रेत जैसी महसूस होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिमनेमा सिल्वेस्ट्रे के अर्क में जिमनेमिक एसिड होता है जो टेस्ट बड्स के संपर्क में आने पर मिठास की अनुभूति नहीं होने देते। ये रसायन रिसेप्टर्स नामक प्रोटीन होते हैं। मिठास का एहसास आमतौर पर चीनी से बने खाद्य पदार्थ खाने से होता है। कड़वा, नमकीन या तीखा खाने की तुलना में मीठा खाने से खुशी होती है। केवल शक्कर ही नहीं बल्कि कई अन्य रासायनिक यौगिक भी मीठे होते हैं, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन और शुगर अल्कोहल। कुछ तो इतने मीठे होते हैं कि चम्मच भर नहीं बल्कि चुटकी भर ही काफी होते हैं। ऐसे पदार्थों का उपयोग शर्करा के विकल्प के रूप में किया जाता है। इस तरह के कृत्रिम मिठास में स्टीवियोसाइड, सैकरिन और एस्पोर्टेम होते हैं। स्टीवियोसाइड एक प्रकार की शर्करा है जो स्टीविया के पौधे से प्राप्त होती है। लेकिन फिर जो मेरे लिए मीठा है जरूरी नहीं कि वह दूसरों के लिए भी उतना ही मीठा हो। आखिर यह आभास प्रत्येक व्यक्ति या प्रजाति के लिए भिन्न क्यों होता है, इस पर शोध जारी है। एक अनुमान के अनुसार मिठास की अनुभूति इसलिए होती है क्योंकि एक मीठा पदार्थ कई स्थानों पर एक रिसेप्टर से जुड़ सकता है, लेकिन यदि सभी रिसेप्टर्स व्यस्त हों तो मीठे का आभास ही नहीं हो पाएगा और वही चीज जो एक व्यक्ति को मीठी लगती है वह दूसरे को स्वादहीन लगेगी। इस अनुमान को मल्टी पॉइंट अटैचमेंट थ्योरी का नाम दिया गया है। स्वाद का आभास स्वाद रिसेप्टर कोशिकाओं के कारण होता है जो हमारे जीभ पर टेस्ट बड्स नामक क्लस्टर बनाती है। स्वाद रिसेप्टर कोशिकाएं कई छोटे अणुओं को एक सार कर सैंपल बनाती हैं और ब्रेन स्टेम केंद्र तक स्वाद की संवेदनाओं को पहुंचाने का कार्य करती हैं। मनुष्य सहित अधिकांश पशुओं में जीवा पर ऊपरी हिस्से पर पैपिला यानी उभरे हुए ऊतक होते हैं। इन्हीं पर टेस्ट बड्स होती हैं। यदि आप आईने में अपनी जीवा को देखें तो ये टेस्ट बड्स नजर आएंगी। हालांकि इनके निरीक्षण के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग आवश्यक है। टेस्ट बड्स पर 50 से 150 तक टेस्ट रिसेप्टर कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जो कि आपस में एक झुंड की भांति गुथी रहती हैं। ये टेस्ट रिसेप्टर्स वास्तव में माइक्रोविलाई में रहते हैं और माइक्रोविलाई टेस्ट बड्स के ऊपर व्यवस्थित रहती हैं। आपस में गुथे इन टेस्ट रिसेप्टर्स में ही टेस्ट नर्व्स यानी स्वाद का आभास देने वाली नर्वस सेल्स का जाल होता है। जैसे ही शर्करा या अन्य रसायन अपने रिसेप्टर्स के संपर्क में आते हैं स्वाद कोशिकाएं उत्प्रेरित होकर हमें स्वाद का आभास कराती हैं। इस उत्प्रेरण के लिए कई विशेष प्रकार के रसायन उत्तरदायी होते हैं। टेस्ट रिसेप्टर्स में होने वाला उत्प्रेरण जितना अधिक होगा उतना ही स्वाद का आभास अधिक होगा। आदिकाल में हम सभी ऐसे प्राणियों की श्रेणी में आते थे जिनके भोजन में लगभग हर प्रकार के स्वाद वाले खाद्य पदार्थ शामिल थे। हम में अपने पूर्वजों से ही ये जीन्स ट्रांसफर हुए हैं जो कि मिठास, खट्टे, कड़वे तथा उमामी स्वाद का आभास कराते हैं। तो इस प्रकार आज भी हम मानव स्वाद में विभिन्नता की अपेक्षा रखते हैं। तो कवि कनकदास जी ने ठीक ही कहा है, मिठास न हमारे भीतर है, न शक्कर में और न ही जिह्वा पर।
कंगनी, फॉक्सटेल मिलेट्स। कंगनी यानी फॉक्सटेल मिलेट। हाल ही में मैं 2 किलो फॉक्सटेल मिलेट्स खरीदने के लिए बाजार गई थी। मैं दुकानदार के सवाल से चौंक गई, 2 किलो किस लिए? आपके घर पर बहुत सारे पक्षी हैं क्या? मुझे समझाने और उन्हें समझने में थोड़ा समय लगा कि बाजरा सिर्फ एक पक्षी का चारा नहीं है, यह मनुष्यों के लिए भी फायदेमंद है। हम सबको मिलेट्स की अच्छाई अपनानी चाहिए जो पोषण से भरे होते हैं, उच्च फाइबर और ग्लूटन यानी लस मुक्त होते हैं। यदि आप सेहतमंद खाना ही खाते हैं तो ऐसी संभावना है कि आप हजारों रुपए सुपरमार्केट्स में खर्च करते होंगे। हालांकि क्या आप जानते हैं कि मिलेट से वही पौष्टिक भोजन प्राप्त किया जा सकता है जिसकी कीमत 100 रुपए प्रति किलो से भी कम हो और आयातित के समान पौष्टिक भी हो। ऐसा ही एक बाजरा मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगी, फॉक्सटेल मिलेट्स। फॉक्सटेल मिलेट्स छोटे अनाज की दूसरी सबसे व्यापक रूप से उगाई जाने वाली प्रजाति है। यह एक पुरानी फसल है जिसका उपयोग 7000 साल पहले चीन में किया गया था। वैज्ञानिक रूप से फॉक्सटेल मिलेट्स को सिटेरिया इटालिक कहा जाता है। फॉक्सटेल मिलेट्स को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि कन्नड़ में नवणे, हिंदी में कंगनी, तेलुगु में कुरलू और तमिल में तेनई। फॉक्सटेल मिलेट्स संभवतः भारत और चीन से उत्पन्न हुआ है। यह एक वार्षिक फसल है जिसे एक अनाज के रूप में उगाया जाता है। इसके पतले तने होते हैं और ये 120 से 200 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं। इसके एक फूल 10 से 30 सेंटीमीटर घने लंबे बालों जैसे होते हैं जो एक लोमड़ी की पूंछ की तरह दिखते हैं। फॉक्सटेल मिलेट्स के अनाज का आकार लगभग 2 मिलीमीटर होता है। फॉक्सटेल मिलेट्स की फसल जल्दी पकती है और इसे ज्यादा पानी की जरूरत भी नहीं होती है, जो इसे अपेक्षाकृत शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बनाता है। फॉक्सटेल मिलेट्स कैलोरी से भरपूर होता है जो शरीर को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। यह स्वस्थ आहार के लिए एकदम सही विकल्प माना जाता है। फॉक्सटेल मिलेट्स मधुमेह रोगियों के लिए हितकर होता है और उनके लिए एक महत्वपूर्ण आहार माना जाता है। 100 ग्राम फॉक्सटेल मिलेट्स में 11.3 ग्राम प्रोटीन, 4.3 ग्राम वसा, 60.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 351 किलो कैलोरी ऊर्जा, 4 ग्राम खनिज, 6.7 ग्राम फाइबर, 2.8 मिलीग्राम लोह, 3.2 मिलीग्राम नियासिन, 290 मिलीग्राम फास्फोरस और 31 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। चावल के विपरीत फॉक्सटेल मिलेट्स शरीर के चयापचय को प्रभावित किए बिना लगातार ग्लूकोज प्रदान करता है। यह आपको आवश्यक मात्रा में विटामिन और खनिज भी प्रदान करता है। इसमें पाचन संबंधी समस्या उत्पन्न करने वाला ग्लूटेन नामक प्रोटीन नहीं होता। फॉक्सटेल मिलेट्स ब्लड शुगर के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और साथ ही वजन घटाने में भी मदद करता है। यह एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है और पाचन संबंधी विकारों को भी ठीक करता है। फॉक्सटेल मिलेट्स में मौजूद फाइबर की उच्च मात्रा कब्ज में राहत दिलाती है और अपच को ठीक करने का भी एक अच्छा तरीका है। विटामिन B6 की प्रचुरता के कारण यह नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करता है। बेशक यदि आप इसका उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो इसका एक अन्य तरीका भी है। इसे चावल या गेहूं के साथ मिलाकर ऐसे व्यंजन बनाएं जिससे इसकी स्वाद और पौष्टिकता दोनों बढ़ जाएं। बाजारों में बिकने वाले मल्टीग्रेन स्नैक्स में बाजरा और गेहूं या चावल का मिश्रण ही तो होता है। इसे अक्सर अन्य अनाज जैसे गेहूं के साथ मिलाया जाता है ताकि बेकरी उत्पाद या नूडल्स बनाया जा सके। वाह, हमें और क्या चाहिए। कम लागत में ही फॉक्सटेल मिलेट्स के माध्यम से हमें पोषण मिल रहा है। हम चावल और अन्य अनाज के सेवन में मानो बाजरे को भूल ही गए हैं और उन्हें पक्षियों के खिलाने के लिए छोड़ दिया है। यह समय है कि हम बाजरे को अपने आहार में अधिक शामिल करें और उनके स्वास्थ्य के गुणों को अपनाएं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, आपको सेहतमंद बनाए रखने के लिए अपने खान पान में फॉक्सटेल मिलेट्स को जोड़ना शुरू कर देना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वास्थ्य ही जीवन की मूल निधि है।
शिशु के लिए ऊपरी आहार का महत्व।
लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, दूध में बताशा मुन्नी करे तमाशा। ओ लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, दूध में बताशा मुन्नी। करे तमाशा।
क्या आपने कभी किसी माँ को अपने बच्चे को खाना खिलाते वक्त इस गाने को गुनगुनाते सुना है? भाई, नन्हे मुन्नों को किचन में तैयार होने वाले भोजन से परिचित करवाना बड़ी टेढ़ी खीर है। कोई कितना ही अच्छा भोजन बना ले, एक जिम्मेदार बेटी, बहन, बहू और पत्नी हो, पर अपने नवजात शिशु को ऊपरी आहार लेने के लिए ढाल पाना सच में चुनौती भरा है। बच्चे को क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना, कितना खिलाना है, कब खिलाना है, क्या माँ का दूध ही बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है? यदि हाँ तो कब तक, और यदि माँ कार्यरत है तो क्या? ये सवाल तब और भी बढ़ जाते हैं जब वह पहली संतान हो। लेकिन फिर अन्य भोजन देने के लिए सबसे अच्छा समय क्या है? कौन सा आहार देना सही है? या कब तक दिया जाना चाहिए? क्या इसे कुछ समय बाद बदल दिया जाना चाहिए? ये अन्य प्रश्न हैं जो एक माँ को चिंतित करते हैं। हमारी दादी नानी जानते हैं कि बच्चे को हमेशा के लिए सिर्फ माँ का दूध ही नहीं पिलाया जा सकता। समय के साथ शिशुओं को माँ के दूध से दूर करना अनिवार्य है। हमें लगेगा ये छोटे से बच्चे के साथ निर्दयता है, पर नहीं। ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि शिशु वह भोजन अपनाने और खाने का आदी हो सके जो उसके परिवार के अन्य सभी सदस्य लेते हैं, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है वीनिंग, यानी ऊपरी आहार की शुरुआत। वास्तव में जन्म के कुछ महीनों बाद शिशु के लिए माँ का दूध पर्याप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि बच्चा बढ़ रहा है। और कैसे बढ़ रहा है जानते हैं? एक स्वस्थ बच्चे का वजन 6 महीने के अंत तक अपने वजन का 2 गुना हो जाता है और अपने पहले जन्मदिन तक 3 गुना। आप समझ सकते हैं कि इस तेज विकास दर को पूरा करने के लिए शिशु को उचित पोषण देना ही होगा, और इसके लिए जरूरी है ऊपरी आहार देना। लगभग 5 या 5.5 महीने के बाद सभी बच्चों को दूध के अलावा अन्य खाद्य पदार्थों से मिलने वाले पोषक तत्वों की भी जरूरत होने लगती है, क्योंकि पहली बात यह है कि बच्चे के पेट की क्षमता 10 मिलीलीटर से 20 मिलीलीटर और फिर 10 गुना यानी कि 200 मिलीलीटर तक बढ़ जाती है। दूसरा, 6 महीने का होने के बाद शिशु के दांत आने लगते हैं, जिसके लिए उसे कुछ चबाने की आवश्यकता होती है। और तीसरा, पाचन तंत्र भी इस हद तक विकसित हो चुका होता है कि उसे हल्का फुल्का आहार दिया जा सके। कुल मिलाकर यही वीनिंग यानी ऊपरी आहार शुरू करने का सही वक्त माना जा सकता है। वीनिंग और कुछ नहीं, बस नियमित आहार का थोड़ा बदला हुआ रूप है जो शिशु के संपूर्ण विकास में सहायक हो सके। बच्चे को हर तरह के पोषण की जरूरत क्यों होती है? उसे बढ़ने, नष्ट होती कोशिकाओं की मरम्मत, रखरखाव और दोबारा वृद्धि के लिए ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। क्या आप सोच रहे हैं कि अब दाल से भरा कटोरा देने का समय है? याद रखें, प्रोटीन के मुख्य स्रोतों में से दाल भी प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, लेकिन सिर्फ दाल ही नहीं। कहा जाता है किसी भी चीज की अति बुरी होती है। प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होने के बावजूद दाल बहुत अधिक मात्रा में नहीं खिलाई जानी चाहिए। ऐसा करने से पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। दाल में ट्रिप्सिन अवरोधक होते हैं जो प्रोटीन अवशोषण में मदद करने वाले एंजाइमों को नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब दिन में एक बार अच्छी तरह से पकी हुई दाल का आधा कटोरा तक देना ठीक है, पर इससे ज्यादा नहीं। फिर दाल नहीं तो और क्या? जी हाँ, अंडा भी तो है, लेकिन सिर्फ उसका पीला भाग जिसे एग योक या जर्दी कहते हैं वो दिया जा सकता है। सफेद भाग में एलर्जी उत्पन्न करने वाली प्रोटीन होती है। और एक बात, कच्चे अंडे शिशुओं को कभी नहीं खिलाने चाहिए, क्योंकि उनमें अनेक बीमारी के कारक बैक्टीरिया हो सकते हैं। ध्यान रखें, बहुत अधिक प्रोटीन शिशु की किडनी पर अतिरिक्त काम करने का दबाव डालती है, इसलिए प्रोटीन से भरपूर भोजन देते समय शिशु को पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाना बहुत जरूरी है। अन्न प्राशन और कुछ नहीं बल्कि एक परंपरा है जो बच्चे को पहले भोजन से परिचित करवाती है। ऊपरी आहार पौष्टिक होने चाहिए जो सभी आवश्यक पोषक तत्वों के साथ पचने में भी आसान हो। हमें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि एक बार में एक तरह का वीनिंग फूड दिया जाए और इसे बनाते समय साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। 5 से 6 महीने की उम्र में शिशु को पतला दलिया या खीर देना शुरू करके धीरे धीरे थोड़ा ठोस भोजन की ओर बढ़ा जा सकता है। इसके अलावा चावल, गेहूं और रागी के आटे में छिले हुए अंकुरित मूंग को पीसकर मिला सकते हैं। कभी कभी इसी मिश्रण में बादाम, मूंगफली और काजू पाउडर का भी प्रयोग किया जा सकता है। एक बार जब बच्चा 8 या 9 महीने का हो जाता है तो मसले हुए आलू के अलावा मसला केला और अन्य फल देने शुरू किए जा सकते हैं। फलों के रस की अगर बात करें तो जी हाँ, आप 7 से 8 माह के शिशु को बिल्कुल फलों का रस दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस पर निर्भर रहना भी ठीक नहीं। बताते हैं क्यों। फलों के रस में ग्लूकोज से कहीं अधिक मात्रा में फ्रक्टोज तथा सॉर्बिटॉल उपस्थित होता है। शिशु बहुत थोड़ी मात्रा में ही सॉर्बिटॉल और फ्रक्टोज को अवशोषित कर पाते हैं और जो अवशोषित नहीं हो पाते वह शिशु के पेट में रहकर फर्मेंट होने लगते हैं और डायरिया, पेट दर्द, पेट फूलना जैसे लक्षणों का कारण बनते हैं। इतना ही नहीं, जूस में उपस्थित शर्करा यदि फर्मेंट होने लगे तो शिशु के दांतों को भी नुकसान पहुंचाने लगती है। इसलिए एक दिन में 1 या 2 फल शिशु को खिलाना जूस देने से बेहतर है। ऊपरी आहार यानी वीनिंग फूड नरम, मसाला रहित और जितना हो सके प्राकृतिक होने चाहिए। शिशु को धीरे धीरे इसके सेवन का आदि बनाया जाना चाहिए। आपको सलाह देना चाहेंगे कि अवसर देखकर कभी कभी शिशु को खुद से खाने के लिए प्रोत्साहित करें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेबी लेड वीनिंग की। दुनिया भर में किए गए प्रयोगों से यह बात सामने आई है कि यदि शिशु को स्वयं अपनी खाने की प्लेट खत्म करने की अनुमति दी जाए तो भले ही आपके लिए थोड़ी परेशानी हो, पर इससे शिशु को भोजन के स्वाद, बनावट, सुगंध और रंग का प्रकार पता लगाने का अवसर मिलेगा। साथ ही इससे शिशु के मोटर डेवलपमेंट यानी आंख, हाथ, मुंह के कोऑर्डिनेशन में भी मदद मिलेगी। तो हल्दी के दागों की चिंता छोड़िए, क्योंकि वाकई में कुछ दाग अच्छे हैं। और गुनगुनाते रहिए।
लल्ला लोरी दूध की कटोरी, दूध में बताशा बुन्नी करे तमाशा। ओ लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, दूध में बताशा बुन्नी करे तमाशा।
तो श्रोताओं, यह था हमारी थाली टेल्स का द्वितीय अंक। आशा है आप सब ने इसका आनंद उठाया होगा। इसकी पटकथा लिखी है सुश्री अक्षता, सुश्री सुरुचि, श्री अब्दुल माजिद तथा डॉक्टर जे आर मंजुनाथ ने। हिंदी रूपांतरण एवं प्रस्तुति सुश्री अनीता, सुश्री अभिलाषा, श्री बलराम तथा सुश्री सुरुचि। थाली टेल्स CSIR CFTRI मैसूरु द्वारा तैयार और निशुल्क वितरित की जाने वाली एक पाक्षिक पत्रिका है। आप थाली टेल्स को किसी के साथ भी साझा कर सकते हैं। श्रोता खाद्य और उससे संबंधित मुद्दों पर अपने प्रश्न और सुझाव व्हाट्सएप के माध्यम से सीधे 08212515910 पर भेज सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.cftri.com पर रजिस्टर कर सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए आप सोमवार से शुक्रवार तक 08212515910 पर भी कॉल कर सकते हैं। थाडी टेल्स के अगले अंकों में आपके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। हमारी अगली मुलाकात 2 सप्ताह बाद होगी। तब तक के लिए इजाजत दें, नमस्कार।